ओम शांति। दादी दादी दिल ये गाता। आज अमृत वेले से ही हम दादी के गीत सुन रहे हैं। दादी की प्यारी सी छवि हमारे नैनों के सामने बार बार आ रही है और दोपहर में आप सभी ने नीचे से डायमंड हॉल से सीधा प्रसारण भी देखा होगा, जो संदेश आया वो भी सुना होगा। और अभी हम सुनेंगे दादी के साथ में रहकर जो अनुभवी भ्राता हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी, एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही आप ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। 4 वर्ष की आयु थी तब से ही आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई थी। उसी माहौल में रहकर लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई आपने की और फिर जब 71 में आप मधुबन में आए, मधुबन की अमीठ छाप आपके दिलो दिमाग पर पड़ी। लेकिन आए तो पूरी तैयारी के साथ नहीं थे, इसलिए वापस तो जाना पड़ा। पर अगली बार 1972 में परमिशन लेटर के साथ मुझे यहाँ समर्पित होना है, उस तैयारी के साथ भ्राता जी यहाँ पहुंचे और तब से लेकर आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरंभ में कुछ अलग अलग विविध सेवाओं में अपना योगदान दिया और फिर 76 से बाबा ने आपको विशेष कौन सी सेवा दी होगी, गेस करेंगे? इसीलिए किस नाम से जाने जाते हैं आप? हाँ, राजू भाई जी। कौन से राजू भाई जी? मुरली वाले राजू भाई जी। जो सिंधी में मुरली, उसको हिंदी में अनुवाद करना और सेवा केंद्रों पर भेजना, ये सेवा आपको बाबा ने दी, जिसको आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ तक कि पत्र पुष्प के द्वारा भी दादियों के पॉइंट्स और सेवाओं के समाचार आप सब तक पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, दादी जी के निमित्त आपको अभी गिफ्ट मिलनी बाकी है, लेकिन जिनको मिल चुकी है, छोटी सी पुस्तक भी मिली है, पुस्तिका, जिसमें दादी जी के प्रति बाबा ने क्या कहा या दादी की क्या शिक्षाएं हैं वो संकलित होती है। तो बाबा ने जो अलग अलग वर्ग के लिए जो महावाक्य उच्चारे हैं, उनकी भी आप छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाते हैं। तो सारा ही दिन बुद्धि में क्या है? बाबा की मुरली। तो बाबा ने और आपको दिव्य बुद्धि का भी वरदान दिया है कि जिसके आधार से इन मुरलियों का बहुत अच्छा मंथन भी करते हैं और जिसके आधार से ही अमूल्य रतन नाम से जो टीवी सीरीज चली, जिसके 1000 एपिसोड पूरे किए आपने, 10 सेंचुरियां लगा दी। तो सोचो बाबा इन पर कितने प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं जिनको मुरली से अगर बाबा से प्यार है, माना मुरली, अगर मुरली से प्यार नहीं है तो जिनके बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रतन है, बाबा उनको कितना प्यार करते होंगे। तो ऐसे बाबा के लाले प्यारे दादियों के अंग संग पले, दादियों के पास जो पत्र आते थे उनके जवाब भी आप ही देते थे और आज दिन तक भी वो सेवाएं आपकी चल रही हैं। और उसके अलावा भी स्टेशनरी, फोटोकॉपी और यहाँ तक कि हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं। तो बहुत सारी जिम्मेवारी लेते हुए भी मुरलियां सदा ही आपके बुद्धि में चलती रहती। हम तो कई बार कहते हैं ना, इतना कारोबार, इतनी जिम्मेवारी, हम तो मुरली पॉइंट भूल गए। लेकिन भ्राता जी बहुत सारी जिम्मेवारियां संभालते हुए मुरली को बहुत अच्छी से पढ़ते, सुनते, मंथन करते और सबके सामने वो खजाना रखते। तो आज तो विशेष दादी जी के संस्मरण सुनाएंगे भ्राता जी। तो हम सुनते हैं दादी जी के संस्मरण।
ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले जिन्होंने दादी जी को देखा है वो हाथ उठाओ। ये सब बहनों ने नहीं देखा? अच्छा अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा है वो हाथ उठाओ। तो बहुत सारे हैं, आदेश ज्यादा है। ২০০৭ ২৫ অগস্ট का वो दिन जब दादी जी के सन्मुख में था शांतिवन में। 5 दिन पहले मैं विदेश यात्रा पर था, लंदन अमेरिका टूर करके वापस लंदन आया था, और जानकी दादी जी के साथ ही मैं बैठा था लंदन में। अचानक मधुबन से फोन आया निर्भयर भाई जी का, और दादी जानकी जी से बात किया कि दादी की कंडीशन ठीक नहीं है और हम लोग दादी को अहमदाबाद लेके जा रहे हैं। तो जानकी दादी ने कहा, क्या मैं आऊं? राजू भाई भी बैठा है, इसको 2 दिन के बाद यहां से निकलना है, तो मैं भी आ जाऊं इनके साथ। तो निर्भयर भाई ने कहा, दादी अभी हम प्रयास कर रहे हैं, दादी शायद ठीक हो जाएंगी, इसलिए अभी आप नहीं आओ, राजू भाई को भेज दो। तो मैंने लंदन से वहां से टिकट तो मेरा था, टाइम पर ही हम थे, दादी जी से मैं छुट्टी लेके गया था कि मैं 1 मास के लिए जा रहा हूँ और आप ऐसे ही ठीक रहना, क्योंकि लग रहा था कंडीशन धीरे धीरे डाउन हो रही है, शरीर में थोड़ी सूजन थी, लेकिन फिर भी दादी ने मुझे दृष्टि दी, देखा जब मैं जा रहा था विदेश। और मैं समझता हूँ 19 या 20 तारीख को मैं लंदन से वापस अहमदाबाद पहुँचा, जब तो अहमदाबाद से डॉक्टर्स ने दादी को जवाब दे दिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, और हम लोगों की राय है कि दादी जी को आप अपने पास ही रखो, जब तक हैं तब तक। तो दादी जी को वापस लेकर के वहाँ से अहमदाबाद से आ रहे थे और हमारी गाड़ी भी पीछे पीछे थी। तो जब हम आए तो 4-5 दिन फिर दादी जी के कमरे में ही योग चलता रहा, वहीं बैठते थे। और जिस दिन दादी जी को अव्यक्त होना था तो 8:30-9 बजे मैंने कहा कि माउंट आबू बहुत दिन से नहीं गए हैं, 1.5 महीना हो गया है, घर तो अपना यही है मधुबन, नीचे इतनी व्यवस्थाएं अपने लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं सामान लेकर के। और हमने वहां से ज्यों गाड़ी स्टार्ट की, बाहर निकले गेट के, थोड़ा ही आगे आए थे, फोन आता है कि आप वापस आ जाओ। क्या हो गया? दादी जी की कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गई है, इसलिए वापस आ जाओ सब। तो वापस किया गाड़ी और सीधा ही क्वार्टर में गए, तो दादी जी के सामने सब बहने भाई खड़े थे, डॉक्टर्स भी खड़े थे, मशीनें सब लगी हुई थी। तो ऐसे ही दृष्टि आंख बंद थी और ऐसे धीरे 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 मशीनें 0-0 होने लगी सब। तो 0-0 हुई तो डॉक्टर ने बोला, दादी गई। थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद वो फिर मशीनें चालू हो गई। तो चालू होते ही सब ने बस, दादी तो आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। 5-7 मिनट के बाद फिर से 0 हुआ, आई आत्मा वापस, फिर गई। तो सब दृश्य हम लोग सामने देख रहे थे। दादी जी के साथ 38 साल रहने का भाग्य मिला। 71 से ही 2007 तक, और ऐसे अंग संग रहे हैं जो माँ और बेटे का भी संबंध है, शिक्षक और स्टूडेंट का भी संबंध है, और गुरु और शिष्य का भी संबंध है। तीनों रूपों से दादी जी की बहुत अच्छी पालना मिली है, क्योंकि छोटा था, 15 साल की उम्र में आया था मधुबन, 16वें साल में समर्पित हो गया। तो पहले ही आए तो दीदी ने, दीदी मनमोहिनी और दादी की जोड़ी थी, वो तो सुना होगा कहानी, दीदी और दादी की जोड़ी, और ऐसी बाबा ने जोड़ी बनाई थी जो शरीर दो थे लेकिन आत्मा एक थी। माना जो बाबा अभी भी इशारा कर रहे हैं कि एक मत हो करके रहो, ऐसी एकता तो मैंने आज तक किसी की भी नहीं देखी। एक ने कहा, दूसरे ने माना, और जबकि दोनों के संस्कार भिन्न, एक कुमारी जीवन, बड़ी फ्राक दिल वाली जीवन दादी प्रकाशमणि की, और दीदी शादीशुदा थी, लेकिन दीदी एक बहुत विल पावर वाली आत्मा थी। लौकिक स्टडी नहीं की थी, स्कूल नहीं में गई, लेकिन एक उनकी जो पावर थी और बाबा से अटूट प्यार, जिगरी प्यार, लौकिक में उनका नाम गोपी था, और गोपिका बन करके बाबा के प्यार में खोई रहती थी। तो दीदी और दादी की जोड़ी ने संकल्प किया था कि बाबा ने हम लोगों को अगर निमित्त बनाया है तो बाबा का जो भी रहा हुआ कार्य है हमें पूरा करना है। जो साकार में कहा है, गली गली में सेंटर खुलेंगे, संस्था विदेश में जाएगी, बहुत सारे धर्म की आत्माएं आएंगी, बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि बाबा ने जब शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, तो दिन में दादी जी को ही पूरी ही यहाँ की सारी व्यवस्थाएं गाइड की दिखाया, क्योंकि दादी तो बॉम्बे में रहती थी, गाम देवी में, दीदी मनमोहिनी यहाँ रहती थी। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी जी का कमरा, जो यहाँ ऑफिस है सामने पुरानी बिल्डिंग में, मम्मा का कमरा था, तो मम्मा के कमरे में दीदी 65 से मम्मा की सीट पर थी, और सारी यज्ञ की कारोबार वो संभालती थी। लेकिन बाबा को जब अव्यक्त होना था तो बाबा ने, तो पता था बाबा को कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, तो दीदी को भेज दिया सेवा पर 3 दिन पहले, कल कुंभ मेले की तरफ, उस साइड में जनवरी में मेले होते हैं, वहाँ भेजा, और दादी पार्टी लेके आई थी। दादी जी को कहा कि पार्टी को भेज दो और रुक जाओ आप यहाँ। दादी कहती है, पहली बार ऐसे बाबा के मुख से मैंने सुना, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि पार्टी को भेज दो, आप रुक जाओ, नहीं तो बाबा कहता था, बच्ची 2 दिन हो गए, भरपूर हो गई, बादल भर गए, अभी जाओ, बरसों जा करके अभी यहाँ रह के क्या करोगे। लेकिन पहली बार बाबा ने कहा तो दादी जी ने 17 तारीख को अपनी पार्टी जो लाई थी साथ में उसको वापस भेजा, और दादी रुक गई। और 18 तारीख को सवेरे जब बाबा के कमरे में वो मिलने गई तो बाबा बहुत ठंडी थी, बहुत ज़्यादा खांस रहे थे, तो दादी ने कहा, बाबा आज आपको रेस्ट करनी है, मैं हूँ आपकी जगह पर, मैं जाके मुरली सुना के आती हूँ, क्लास में क्लास करा के आती हूँ। तो पहला दिन था जो बाबा अपने कमरे में ही थे, और वही हिस्ट्री हॉल बन गया था, वो जो छोटा हॉल है वही हॉल था। तो दादी गई, सबको रिफ्रेश किया, मुरली सुनाई, क्लास कराया, और फिर जब वापस आई तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को कुछ तकलीफ नहीं है, आप लोग ख्याल नहीं करो, चलो चलो चलते हैं बच्चे, इसु दादी के ऑफिस में बैठ के सबको पत्र लिखते हैं। तो दादी के साथ ही बाबा आए उठ करके कमरे से, और इसु दादी के ऑफिस में बैठ करके उस दिन 40-50 पत्र थे जो दो चार दिन से नहीं उत्तर गए थे। बाबा ने सब सुने और सबको लाल पेंसिल से जवाब दिया, लिखा। उसके बाद बाबा कहने लगे, चलो बच्ची आज आपको पांडव भवन सैर कराते हैं, दिखाते हैं कहाँ क्या चल रहा है और बाबा की प्लानिंग क्या क्या है। इस हाल की भी बहुत बड़ी प्लानिंग थी बाबा की, ये जो बनाया बाद में दादी ने, ये 74 में बनाया। तो बाबा वैसे सारा चक्कर लगाते, जो मिस्त्री थे, जो मेन लोग काम करने वाले थे, वो ट्रेनिंग सेंटर का पोर्शन बन रहा था। तो बाबा ने कहा यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग करेंगी कराने वालों के लिए, कि यहाँ इंद्रप्रस्थ बनाएंगे, ऐसे सामने शांति स्तंभ के सामने जो बिल्डिंग बनी है उसका प्लान बाबा ने दादी को दिया कि यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, ऐसे करके पूरे घर का चक्कर लगवाया। और बाद में भंडारे में ले गई, भंडारे में कहाँ कौन क्या क्या डिपार्टमेंट हैं, कौन संभालते हैं, कितना स्टॉक रखा है। दादी समझ नहीं पा रही थी बाबा मुझे सब क्यों बता रहे हैं एक एक चीज हाथ से, लेकिन बाबा ने पूरा घर उनको घुमाया, सबसे मिलाया, सबको परिचय कराया कि दादी है ये, बॉम्बे में रहती है। उसके बाद बाबा आए, रेस्ट किया थोड़ा भोजन करके और शाम को कहने लगे कि बच्ची आज सवेरे सवेरे बाबा ने बच्चों को खुराक नहीं दी है, भोजन नहीं दिया है, इसलिए जल्दी बेल बजा दो। बेल बजती थी घंटी कि सब आ जाए, इकट्ठे हों भाई बहने और बाबा मुरली सुनाएंगे, क्लास करेंगे। तो सबको 8:30 बुला लिया, वैसे 9 लगभग क्लास होता रात्रि का। तो 8:30 के पहले ही सब हाल में आ गए और बाबा गए, बहुत प्यार से आधा घंटे 45 मुरली सुनाई। और मुरली सुनाने के बाद दादी साथ ही थी, विदाई भी ली बाबा ने और साथ में बाबा दादी के साथ ही कमरे में आए, चारपाई पर बैठे, दृष्टि देते देते दादी को हाथ ऐसे दिया तो दादी ने समझा आज बाबा को लगता है कुछ तकलीफ है, ठंडी लग रही है। तो दादी ने बाबा को कहा, बाबा आप लेट जाओ। और ऐसे जैसे लिटाया जाता ना, ऐसे दादी ने ऐसे लिटाने की कोशिश की बाबा को, और हाथ में हाथ था और लिटाया और रजाई उड़ाने लगी और बाबा चले गए, अव्यक्त हो गए, हाथ ठंडा पड़ गया, ढीला हो गया एकदम। दादी को लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन ये नहीं पता चला कि बाबा अव्यक्त हो गए। तो दादी बाहर आके एक भाई को बोली कि डॉक्टर को बुला के लाओ, कुछ लगता है बाबा को तकलीफ है। तो यहाँ एक तदानी डॉक्टर सिंधी थे, रहते थे आबू में, वही बाबा के पर्सनल देख देख करते थे। उनको बुलाने के लिए गए और डॉक्टर कम से कम 15-20 आधा घंटे के बाद आया। तो जब आया और देखा तो कहता, सॉरी दादी, बाबा तो ही नहीं, तो शरीर छूट गया। और ऐसे कह के चुपचाप बाहर निकल के चला गया। नहीं ऐसे कैसे, अभी अभी तो दादी ने बाबा ने मुरली सुनाई, इतना अच्छा सबको रिफ्रेश किया है, इतना सब कुछ। तो दादी पहले तो हिलाती रही, बाबा को देखती रही, बाद में हिम्मत आ गई थी बाबा की, शक्ति भर थी बाबा ने हाथ में हाथ देके। उसके बाद फिर दादी ने पूरी रात जाग करके लाइटनिंग कॉल, क्योंकि यहाँ तो फोन नहीं लगते थे, मोबाइल तो थे ही नहीं, सारी रात जिसको फोन करे, जिसके पास घंटी जाए, वो कहे क्या बोल रही है, तुम कहाँ से आ गई। दादी तो यहाँ रहती नहीं थी, वो तो बॉम्बे में थी। और दादी कहे मैं मधुबन से बोल रही हूँ और बाबा ऐसे ऐसे अभी अभी अव्यक्त हुए हैं, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जिसको सुनाए वो सब, ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे है, बाबा कहीं गया नहीं, आप आओ वापस यहाँ मधुबन आ जाओ। दीदी को फोन किया, गुलजार दादी को फोन किया, ये सब बड़े भाई बहनों को कहा। और सबको आने में तो अपने साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए। तो 18 तारीख को, सारी रात को छोटा था 9, 19 और 20 तारीख को लगभग सभी लोग आ गए। ठंडी बहुत थी यहाँ पर, कमरे भी इतने, मकान भी नहीं थे, लेकिन जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली सब रहे आ करके। और दो दिन के बाद, क्योंकि बाबा के पास दादी बार बार संदेशों को भेजती थी, जाओ कहाँ है बाबा से बात करो, बाबा से पूछो क्या करना है, कैसे हुआ, क्या है। और बाबा जब गुलजार दादी पहले पहले गई तो बाबा ने ऊपर दिखाया ड्रामा, एक ही पर्दे पर सीन थी ड्रामा, और वो आकर के वापस कहती है कि बाबा ने कहा ड्रामा। तो दादी कहती ड्रामा का ज्ञान मुझे भी है, आप बाबा को बोलो बाबा आप कहाँ हैं, आप मिलो आकर के। तो गुलजार दादी तो गई, लेकिन गुलजार दादी को दिखा के वापस भेजा, लेकिन संतरी दादी बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी थी। तो संतरी दादी जब गई तो बाबा 5 मिनट के लिए आए, प्रवेश हुए और आके बोला कि बच्ची जैसे पुराना शरीर छूटता है तो पुराना शरीर बाबा ने छोड़ा है, कमरा चेंज किया है, कहीं गए नहीं है, कमरा चेंज किया, ड्रेस चेंज की, बच्चों के साथ ही हैं, लेकिन जैसे पुराने शरीर का संस्कार होता है ऐसे करो। डायरेक्शन दिया बाबा ने सारे। उसके बाद तो सब आ गए थे, बड़े भाई बहने सब यहीं पर आ गए। तो बाबा के रथ का श्रृंगार करके पूरे आबू की परिक्रमा दिया। फिर जगदीश भाई ने कहा मुझे यहीं संस्कार करना है, तो यहाँ के कुछ अधिकारी लोगों ने फिर छुट्टी दिलाई और फिर ये शांति स्तंभ यहाँ बना। यहाँ बाबा खेलते थे साकार में, टेनिस कोर्ट था। तो ऐसे करके 69 को दादी जी के हाथ में बाबा ने यज्ञ की बागडोर जैसे सौंपी, और 21 तारीख को जब बाबा गुलजार दादी के तन में आए भोग लगा संस्कार के बाद, तो 1.5 घंटे के लिए बाबा की प्रवेशता हुई और फिर बाबा ने पूरे डायरेक्शन दिए कैसे आगे यज्ञ चलाना है, जब बच्चे बाबा को बुलाएंगे बाबा आएंगे, बाबा कहीं गए नहीं हैं, जिस तन में बुलाएंगे उस तन में आएंगे। लेकिन दीदी और दादी दोनों के ऊपर कलश रखा और कहा कि, जबकि सब दादियां और थी साथ में, निर्मल संत दादी बाबा की बहुत अनन्य बच्ची, लौकिक बच्ची, और बाबा की लौकिक बहू ब्रजेंद्रा दादी, वो भी बहुत पावरफुल आत्मा, सब थे साथ में, लेकिन दीदी और दादी के ऊपर बाबा ने कलश रखा और कहा ये दोनों मिल करके सबको साथ लेकर के चलेंगे, और जहां पर भी कोई सेवाएं होंगी, आना जाना करना होगा, ये जाएंगी आएंगी, लेकिन यज्ञ में रह करके पूरा ही बाबा के बाद ये संभालेंगे। तो 21 तारीख को समझो, ये 69 21 तारीख को जवाबदारी बाबा ने डायरेक्ट इनके ऊपर सौंपी। अब फिर दीदी दादी ने सबको साथ लिया, सबके संस्कार, भिन्न संस्कार, बड़ी दादियां, उनसे भी बड़ी दादियां सब, लेकिन नम्रता का अवतार बन करके, सबको सम्मान दे करके, कभी भी अपना बड़ा रूप, मैं बड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मुझे बाबा ने जवाबदारी दी है, बहुत निमित्त भाव से निर्माण चित बन करके सबको सम्मान दिया, परदादी को भी साथ रखा, ब्रजेंद्रा दादी को भी साथ रखा, आते जाते गए। लेकिन पूरा यज्ञ कैसे आगे चलाना है, कैसे क्या करना है, प्लानिंग की, और 71 में सबसे पहले एक निमंत्रण पर 5 भाई बहनों का एक ग्रुप लंदन भेजा, जिसमें जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा बहन, निर्मला दादी दीदी और रोजी दादी, सील दादी, ऐसे 4 बहनें 2 भाई, 6 लोग गए थे पहले। और ये जब गए लंदन में तो लंदन से बीज पड़ा सेवाओं का, और फिर धीरे धीरे उसी समय से ही समझो वहाँ से सेंटर खुला और फिर विदेश में सेवाएं शुरू हुई। और बाबा जब भी कहते थे, दादी दीदी अगर बाबा को गुलजार दादी को बिठा देती थी, कहीं पर भी बिठा दिया, बाबा को बुलाओ, बाबा से मुझे मिलना है, बाबा से मुझे पूछना है, तो इतना अधिकार था कि गुलजार दादी अगर बाबा के पास ट्रांस में गई हैं तो बाबा वहीं पर आ जाएंगे। और आते थे कभी दीदी के कमरे में, कभी बाबा अपने कमरे में, कभी छोटे हाल में गद्दी पर ही, भोग वोग की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसे बैठ गई योग में, ट्रांस में गई और बाबा की प्रवेशता हुई। बच्चों क्या हाल, क्या पूछना है, क्या कहना है, सब डायरेक्शन लिया, बात किया और फिर चले जाते थे। और हम लोग जब आए 71 में तो पहली बार बाबा गद्दी पर यहाँ आए थे अपने कमरे में, और मेरी लोग की बड़ी बहन साथ में थी, तो मेरा परिचय बाबा से कराने के लिए गई साथ में लेकर के। और जब मेरा परिचय देने लगी तो बाबा बहुत प्यार से मुस्कराए और ऐसी मुस्कराते हुए दृष्टि दी मुझे, और बाबा ने उनको रोक दिया, बाबा जानता है। अब क्या जानता है, मैं भी नहीं जानता, बाबा जानता है। तो बाबा ने बहुत प्यार से सरोज दीदी को तो रोक दिया, बात नहीं करने दिया, फिर मुझे दृष्टि देते, ठीक है क्या कर रहे हो, किस में पढ़ते हो, कैसे, बाबा ने भी सब जैसे पूछ लिया। और पूछने के बाद मैं एक मास तो यहाँ पर खूब सेवाएं की, छोटा था, जहाँ जो सेवा होती थी भाग भाग के कर लेता था, और सेवाएं तो यहाँ थी ही स्थूल, और कोई तो कुछ काम ही नहीं था। और अधिकतर बूढ़ी माताएं जो थी, दादियों की जो माँ बुजुर्ग थी, जैसे हमारी रतनमोहिनी दादी की माँ थी देवी माता, हमारी दीदी की लौकिक माँ क्वीन मदर थी, एक ध्यानी दादी थी, और एक बुजुर्ग दो तीन माताएं थी। माताओं को ही बाबा ने यहाँ रखा था, बाकी तो सबको सेंटर पर बहनों को भेज दिया था। तो उनकी सेवा के लिए कोई चाहिए होते थे, कोई इनको पानी दे आए, क्योंकि गर्म पानी कमरों में नहीं होता था, कभी एक पानी की जो गर्म बोतल होती है वो भर के उनको दे देवे, कोई कुछ खाना चाहिए, कुछ दूध चाहिए, या कपड़े धुला धो करके सुखा करके आए। तो मैं सब जाके सब दादियों के पास, सब माताओं के पास सेवा करता था, छोटा था, सब बुला लेती थी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो मैं सबके कमरों में जा करके खूब सेवा करके आता था। और वो सेवा के कारण दीदी की नज़र थी कि ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लायक है। ये नहीं पता था कि मैं छोटा हूँ अभी या अभी किस क्लास में पढ़ा था। दादी को दीदी ने बोला कि ये जो लड़का आया है ना, इससे आप बात करो, यहाँ रहेगा क्या? तो दादी ने कहा ठीक है मैं पूछूंगी। तो जब मेरे जाने के दिन आए, स्कूल छुट्टी पूरी हो गई थी, एक महीने की छुट्टी में आया था, मैं 9th पढ़ता था, तो दादी ने मेरे को यहाँ जो यहाँ झूला पड़ा है ना कुटिया के पास, वही झूला है, अभी थोड़ा चेंज शायद किया है, लेकिन वही झूला है, वही स्थान है। तो इसी झूले पर मेरे को साथ में बिठाया, और मैं तो छोटा था, डर लगता था, इतनी संस्था की हेड मेरे साथ बैठ करके बात करे। तो दादी ने कहा नहीं नहीं बैठो, मेरे साथ ही बैठो, झूले पर बिठा लिया। और बिठाने के बाद जब प्रश्न किए दो चार, और मैंने जवाब तो दिए, कहती है तुम किस क्लास में पढ़ते हो? हमने 9th में पढ़ते हैं। लौकिक में कौन कौन है? हमने कहा ज्ञान में तो दो हैं, चाचा हैं, पिताजी हैं, माँ है, बहन तो यही है, बाकी मैं अपने लौकिक में तीन पिता के बीच में इकलौता बेटा हूँ। नाना पिताजी के जो बड़े भाई थे उन्होंने शादी नहीं की, वो भाई शुरू से ही भक्ति में पूजा में लग गए, और चाचा जी तो छोटे थे वो भी उनके साथ भक्ति करते थे, इसलिए शादी दोनों ने नहीं की। और पिताजी की शादी में हम दो बच्चे ही थे, बहन भाई। तो दादी को जब ये बात सुनाई तो दादी कहने लगी अरे दीदी की नज़र तुम्हारे पर पड़ी है, तुमको तो छुट्टी नहीं मिलेगी, लौकिक में तुमको कौन छुट्टी देगा? तो हमने कहा दादी आप छुट्टी अगर देंगे तो छुट्टी मैं ले लूँगा। कहती कैसे ले लेगा? दादी पिताजी कहते हैं विनाश होने वाला है, और विनाश होने वाला तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो दादी तो हंसने लगी, मुस्कुराई, कहती है ये तो ठीक है विनाश होगा, लेकिन कम से कम 18 साल के बाद निर्णय लिया जाता है, अभी 15 साल की उम्र है तुम्हारी और 9th में पढ़ रहे हो, दो चार साल और पढ़ लो। हमने कहा नहीं 76 में विनाश होने वाला है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे यही रहना है, तो आप अगर छुट्टी देंगे तो। कहते ठीक है, लेकिन ऐसी बातें लगती हैं कि तुमको सहज घर से छुट्टी मिलेगी नहीं। तो हमने कहा आप छुट्टी दो तो मैं बात करूंगा। कहते ठीक है अच्छा एक साल के लिए जाओ हाई स्कूल कर लो, और अगर फिर छुट्टी मिले तो पिताजी से चिट्ठी लेकर के कायदे से आना। तो मैं चला गया यहाँ से छुट्टी लेकर के, और गया तो वो 71 में बांग्लादेश वाली लड़ाई छिड़ी, पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी इंदिरा गांधी जी के समय, और वो इतनी शाम को 6 बजता था ना तो सब जगह साइरन बजते थे जोर से, और साइरन बजते ही सब ब्लैक आउट हो जाता था, जहां हम पढ़ते थे तो स्कूल की लाइफ में वो पढ़ते थे, वहां तो लाइट थी, हमारे गांव में लाइट नहीं थी, लेकिन वहां सब ब्लैक आउट, 6 बजे के बाद 6:30 बजे बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था, सब कमरों में बंद, सब लाइटें बंद, कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए, और बहुत जोर से ऐसे लगता था जैसे बम यहीं गिरेगा, प्लेन उड़ते थे आकर के। तो वो देख करके मुझे तो और आ गया कि तो दादी ने बोला अभी विनाश, हमने कहा था विनाश होने वाला है, तो शुरू हो गया, तो और पक्का हो गया विनाश शुरू हो गया। फिर पिताजी को बताया तो पिताजी कहते हैं तुम्हारी दिल है तो जाओ, मैं चिट्ठी देता हूँ। तो मैंने 6 तारीख को, 6 अप्रैल को पेपर पूरा, 5 अप्रैल को मेरे पेपर पूरे हुए हाई स्कूल के, और 6 को ट्रेन पकड़ी और 7 को मैं आ गया सीधा ही। लेकिन 7 अप्रैल को जब 72 में मैं आया और गेट पर ज्यों मैंने घुसा, क्योंकि गाड़ी नहीं आती थी यहाँ तक, वो तो बस अड्डे पर छोड़ देती थी, तो या तो बैलगाड़ी से सामान आता था या पैदल आते थे, तो हमारे पास सामान तो था, होल्डाल ये वो सब लेके आना पड़ता था। तो दादी वहीं गेट पर मिल गई, चक्कर लगा रही थी पैदल, दोपहर का समय था, और मेरे को देख के पहचान लिया, कहती अच्छा तुम आ गया क्या, तुमको छुट्टी मिली, चिट्ठी दिखाओ। मैं गेट पर ही खड़े खड़े चिट्ठी निकाली और चिट्ठी दिया, दादी ने पढ़ा और पढ़ करके तो इतनी खुश हो गई चिट्ठी पढ़ के, तुम्हारे पिता को इतना निश्चय है, और उसमें ऐसे ऐसे शब्द थे पिताजी के, क्योंकि बाबा में बहुत उनका जिगरी प्यार था, और बाबा ने उनको पहले से जैसे वरदान दिया हुआ था, साकार के समय बहुत बार आए, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तभी वो यहीं थे, तो बहुत दिल की लगन वाले थे। तो उन्होंने पत्र में लिखा था कि इस कलयुग के अंत में जब भगवान सृष्टि पर अवतरित हो और नई दुनिया बनाने का दिव्य कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर सहयोग करने के लिए मेरे बच्चों को चांस मिले तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। ऐसे ऐसे शब्द थे, और उसके साथ एक शब्द था कि दादी इनको तो आप रखो, लेकिन चांस मिले तो मेरे को भी समर्पित करा लेना, मैं भी समर्पित हो जाऊंगा। तो दादी वो शब्द पढ़ करके ही बहुत खुश हो गई, और यहाँ पर एक स्टोर था आवास निवास का, एक माता संभालती थी, शांति माता नाम था उनका, और मुझे कहा तुम शांति माता के पास, मैं छोटा था ना, तो शांति माता के पास सेवा करो जाकर। तो शांति माता आवास निवास में बिस्तर ये वो सब सब कुछ वही देखती थी पूरे घर को, जैसे कोई आए जाए, पार्टी सामान उठाना, उनके साथ उनको कमरा देना, आवास निवास डिपार्टमेंट को इंचार्ज थे। तो मैं चला गया उसके साथ सेवा किया। फिर उसके बाद यहाँ तो सब स्थूल सेवाएं थी, धोबी घाट यहाँ पर बना हुआ था पाटे वाला, जो पाटे पर धोबी लोग होते ना ऐसे, वो पाटे वाला धोबी घाट था, और रोटियां तो चूल्हे पर ही बनती थी, लकड़ी आती थी जंगल की, गैस नहीं, स्टीम नहीं, ये तो सब बाद में आए हैं, बहुत बाद में आए। और दादी दीदी का एक लक्ष्य रहता था कि कोई भी मजदूर को यहाँ घर में नहीं रखना, नौकर नहीं चाहिए। दादियों के कमरे में आए पतित लोग, विकारी लोग, हाथ लगाए नहीं, इसलिए सब सफाई अपनी आप लोग करेंगे, घरों की कमरों की सफाई करो, धोबी घाट करो। फिर बोरियां आती थी देखना, वो लोग देखे नहीं, कोई अनाज की बोरियां आई हैं, इनको उठाना, इनको रखना। और उस समय की एक सिस्टम थी, अगर गेहूं हमारे पास एक ट्रक आया है तो ऐसे ही स्टोर में नहीं रखेंगे, उसकी धुलाई करेंगे, कहती थी इनको धुलाई करो सब। तो सारे दिन में सब भाई आते थे और पानी के टबों में बोरियां उलट के डालते थे, धोते थे अच्छी तरह से रगड़ के, और शांति स्तंभ पर सुखाते थे। और चावल आते थे तो कहती थी इनको चांदनी रात पर डालो, जिसमें इसमें जो छोटे छोटे कीड़े हैं ना, शीतल का उसमें भाग जाएंगे बाद में। तो चावल को रात को सुखा देते थे और गेहूं को धुलाई करके सुखाते थे। और अगर कहीं थोड़े भी बादल दिखाई दिए तो दादी को तो बहुत यज्ञ की बात, बहुत यज्ञ रक्षक थी वो, तो जरा भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो बाहर आ जाती थी, कहती बजाओ घंटी, सब भाइयों को बुलाओ, बादल आए हैं, कहीं बरसात ना आए, उठाओ जल्दी जल्दी, खुद लग जाती थी साथ में आकर के। बहुत नम्रता का अवतार थी, कोई काम में पीछे नहीं हटी, करके सिखाया, कैसे नहीं कह के सिखाया, हर चीज करने में नंबर वन, लग गई फिर बाद में भाई लोग अपने आप लग जाएंगे। तो एक दिन बहुत जोर से बादल आए और दोपहर को ही समय था, सब रेस्ट करने 3 बजे चले गए थे। दादी घूम रही थी चक्कर, देखा ये तो बादल आ गए हैं, कहीं बरसात आएगी, बुलाओ सबको। अब सबको बुला लिया, उठवाया, उठवा के कमरे में सेट किया। उसके बाद बहुत जोर से बरसात पड़ी, तो दादियों को टचिंग भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन उनको एक एक यज्ञ की पाई पाई की कदर ऐसी थी कि जरा भी यज्ञ का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए दादियों ने, दीदी और दादी, दीदी की उम्र थोड़ी बड़ी थी इसलिए दीदी अधिकतर अंदर की कारोबार में, इंटरनल जो अंदर की लिखा पढ़ी की कारोबार थी, पत्र व्यवहार थे, बाबा की पूरी सीट उन्होंने संभाली हुई थी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, उनसे मिलना, उनसे पहले हल लेना। लेकिन दादी ऑलराउंडर थी, दादी को अगर अभी भाषण करने जाना है तो भाषण करने पहुंच जाती थी, अभी कोई कर्मणा सेवा करानी है तो उसमें खड़ी हो जाती थी। और प्लानिंग बहुत, प्लानिंग इतनी थी कि मैं समझता हूँ 72 से मैंने अपनी आंखों से देखा, एक एक चीज जितना विस्तार हुआ है वो सब दादी की प्लानिंग से हुआ है। 74 में हाल बनवाया, ये हाल जिसमें आप बैठे हैं बना ही नहीं था, इसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ था। बाबा को कहा, बाबा आप एक बार यहाँ आ जाओ, और इधर गद्दी जहाँ ये भाई लोग बैठे ना, यहाँ गद्दी लगाई बाबा की, बिल्कुल कच्चा था, फर्श भी नहीं थी। और बाबा को बुलाया और हम लोग करीब 300-400 ऐसे ही सब चारों तरफ से घेर लिया बाबा को, ऐसे नीचे बैठा करके। और फिर बाबा आए और बहुत सख्त अच्छी मुरली चलाई, और मुरली चलाने के बाद दादी को आया कि हमारा हाल सफल हो गया, बाबा आ गया एक बार, अभी कुछ भी हो, 76 का विनाश पक्का था, अभी कुछ भी हो। 74 में ये अच्छी तरह से मतलब इसका उद्घाटन किया बाबा ने आकर के। फिर उसकी बाद में बुद्धि चलने लगी और भी, क्योंकि जितना बनाओ छोटा पड़ जाए, जो बनाओ छोटा पड़ जाए। और भाई बहने बाबा के इतने यज्ञ के प्रति वफादार, कई बाबा के ऐसे बच्चे गुप्त होते हैं जो कुछ न कुछ नया करें, कुछ न कुछ नया करें। बिना बताए भी ये सुखधाम की जमीन ऐसे ही पड़ी हुई थी, एक भाई आया महाराष्ट्र से, बहुत अनन्य बाबा का बच्चा, अभी शरीर छोड़ा, एक इसी कोरोना में एक ने छोड़ा, एक दूसरे दिन एक साल पहले छोड़ा, दो भाई थे केला वाले हम बोलते थे उनको। और इतने बाबा के गुप्त बच्चे, कहता है मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया है लेकिन केले का भाव मैं ही बनाता हूं और रोज 1,00,000 रुपया कमाता हूं, केले का भाव निकालता था वो। केले वाला बहुत होते ना, ये रावेर और इधर बुरहानपुर की साइड में केला बहुत होता है, वो तो केले वाला ही भाई हम कहते थे। उन्होंने देखा ये सुखधाम की जमीन पड़ी है तो चुपचाप, कहाँ की है, किसकी है, खरीद लिया। दादी को बताया, दादी एक जमीन यहाँ है, मैंने ले लिया है, क्या करना है? दादी यहाँ एक बाबा के बच्चों के लिए भवन बना दो। कौन बनाएगा? दादी आप हाँ करो ना, हमने ले लिया, बना लेंगे हम सब, सुखधाम बन गया। फिर यहाँ जंगल था सामने ओम शांति भवन, और यहाँ जब हम लोग 8 बजे के बाद अगर निकल गए तो दादी को बड़ी चिंता होती थी, क्योंकि रीछ आते थे, भालू आ जाते थे, तो इसलिए 8-8:30 के बाद कोई निकलता नहीं था, बहुत जंगल था यहाँ। तो एक जयपुर के भाई अपने शर्मा जी आए, देखा, बात किया, कहाँ की है, किसकी है, चुपचाप उसने वो पहाड़ी ले लिया, पहाड़ी थी ये सारी, और ले करके दादी कहती है, दादी यहाँ पर एक हाल बना दो ना, बड़ा है, छोटा पड़ गया हाल, जमीन लेकर के दे दिया। अब दादी को ऐसे ऐसे संकल्प जो आते थे ना, कोई भी संकल्प आ जाए माना होना ही है, सिद्धि स्वरूप आत्मा थी, जो संकल्प रच लिया कि बच्चे आ रहे हैं, वृद्धि हो रही है, पैसा कहाँ से आएगा, कुछ वो कोई संकल्प नहीं, बाबा बैठा है। कहती थी दूल्हेलाल का कुआं है हमारे पास, दूल्हेलाल का कुआं देखा आप लोगों ने, रंजन भाई देखा, राजन भाई नहीं देखा है, देख लेना, एक दूल्हेलाल का कुआं है यहाँ। बाबा से भी कोई पूछता था ना, बाबा इतना सब खर्चा कैसे चलता है, तो बाबा कहता था बच्चे एक कुआं है दूल्हेलाल का, वो अपने आप देता रहता है। अरे जिसके इतने बच्चे कमाने वाले हैं, उसके माँ बाप से कोई पूछा जाता है पैसा कहाँ से आता है? जिसके इतने सब बच्चे कमा रहे हैं, बाबा ने थोड़ी किसी को छुड़ाया कोई बिजनेस करने से, नौकरी करने से। तो दादी भी बड़ी मस्त रहती थी, ओम शांति भवन की जमीन मिली, बोला बनाना है। और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी वो थी, बिल्कुल पहाड़ी नहीं तोड़नी है, नोटिस पर नोटिस, ठीक है नहीं तोड़ेंगे। 3 मंजिल बना दिया, एक तरफ से पहाड़ी थी ना, जितना तोड़ा ऊपर नोटिस आई रोक दिया, एक ताज जैसा बहुत सुंदर भवन बन गया। लेकिन पैसा नहीं है, इंजीनियर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मधुबन वाले बैठे हैं सब करेंगे। डेली हम लोगों की रूटीन में शाम को 4 बजे चलो चाय वहीं जाएगी, चाल पर चाय जाएगी, सब चाय यहीं पियेंगे, पकौड़ा बनवा दो। दादी पहुंच गई हैं और उठाओ पत्थर, इधर से इधर, इधर से इधर, एक तोड़ रहा है वो दूसरा उठा रहा है, और वही पत्थर ईंट चुनाई हो रही है। आप समझ सकते हो 82 में नवंबर दिसंबर में हाल की दीवार एक नहीं बनी थी, और फरवरी की डेट अनाउंस कर दिया कि फरवरी में इसका उद्घाटन होगा 83 में। अब 2 मास के अंदर इतना बड़ा हाल बन जाएगा 3000 सीट का, न कैंची बनी है, न छत है, दीवार बाकी है। लेकिन दादी जी का जो उमंग उत्साह था, बाबा बैठा है, हमने तो डेट दे दिया। और वहां से रॉबर्ट मुलर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशन का, उसने कहा मैं आऊंगा उद्घाटन करने। अब आप बताओ, अमेरिका से आने के लिए VIP तैयार, एक इजिप्ट की एक तैयार हो गई लेडी कि मैं आऊंगी, ऐसे 3-4 बड़े बड़े VIPs का नाम आ गया उद्घाटन करने, और यहां मकान बना ही नहीं है। वाह बाबा है ना। तो दादी के अंदर जो लहर थी ना, जिसको जो बोलती थी कोई नहीं कहता था दादी नहीं हो सकता, हाँ दादी हो जाएगा। तो एक सूरत में भाई था, लता दीदी थी हमारी सूरत में, उनके पास एक बहुत अच्छा इंजीनियर था, उसकी अपने ग्रुप था, उसको पता चला ओम शांति भवन के उद्घाटन की डेट बन गई है और बना नहीं है, तो दादी को कहता दादी मैं पूरा ग्रुप लेके आ जाता हूँ, मैं बनवा दूंगा 1-2 महीने में सब, और अपनी पूरी गैंग जो भी उसकी थी कंस्ट्रक्शन की वो सब को लेकर के आ गया। और लाया फटाफट दीवार क्या चुनाई किया, और एक अहमदाबाद का बुजुर्ग भाई, अभी थोड़े दिन पहले सर छोड़ा, आनंद भाई नाम था काका, वो वेल्डिंग का काम जानता था, एक सेंटर पर जाता था, वो आया कहता है दादी कैंची की जवाबदारी मैं लेता हूं, इतनी बड़ी बड़ी कैंची, उसने कैंची की जवाबदारी ले लिया, कैंची मैं लगा दूंगा। पूरा तैयारी हो गई, साउंड सेटिंग के लिए जाल मिस्त्री सबसे बड़ा बॉम्बे का, उसको योगिनी बहन ने तैयार किया, वो फ्री आ गया, नहीं तो लाखों रुपया लेता है देखने का, आवाज सेट करने का, सेटिंग करने का। वो आया देख करके सारी सेटिंग करवा दिया, कैसी स्टेज बननी चाहिए, कैसी सीट बननी चाहिए। और मैं समझता हूँ जब लास्ट में बाबा से कहा बाबा थोड़ा सा इसमें संगमरमर लगवा दें, मार्बल लगवा दें, बाबा ऐसे आँख दिखा दिया, बिल्कुल नहीं, बाबा गरीब निवाज है, गरीबों का बच्चों का पैसा है, मोजाइल टाइल लगवा दो, सारा मोजाइल टाइल लगा हुआ वहां, संगमरमर नहीं है कहीं। लेकिन एक नाइट के अंदर मोजाइल टाइल लगवाई और उसकी घिसाई करा करके चमका दिया उसको, टाइम पर 8 फरवरी को इसका उद्घाटन हो गया। दीदी थी उस समय, लेकिन दीदी और दादी ने उद्घाटन बहुत उमंग उत्साह से किया, ऐसा लगा कि अभी तो बस प्रत्यक्षता हो गई। माना वो सीन जो थी, वो सीन आपको क्या मैं बताऊं, दादी की उमंग की, कहा पूरा आबू ले लो और 3000 सीट का हाल भरना चाहिए, मधुबन में 500 लोग भी आ जाएं तो एकोमोडेशन की जगह नहीं रहती, फुल हो गया, इतना घर नहीं है। सुखधाम बन गया था, विज्ञान भवन था, और ये था 500 लोगों की व्यवस्था नहीं है और 3000 का हाल भरना चाहिए, तो हाल भरना चाहिए तो उसके लिए सब ब्राह्मणों को खुली छुट्टी दे दिया और आबू के सारे होटल, सारे जितने भी मकान सब ले लिया किराए पर, और हम लोगों की ड्यूटी लगा दिया कि जाओ एक एक बिल्डिंग सब भाई लोग संभालो। अब वहां जब हम लोग जाते थे, रघुनाथ मंदिर हमको दिया था, उनके बिस्तर देख करके तो दिल कच्ची हो जाए, इतना गंदे बिस्तर, हमने कैसे ब्राह्मण सोएंगे इसके अंदर। दादी कहती थी सारी उनकी इच्छा उतार के ले आओ, धुलाई करो, साफ करो सब। पहले ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मणों को ऐसे थोड़ी होटलों में ठहराना है, ऐसे धर्मशालाओं में। पानी गर्म करने की व्यवस्था कहाँ है? दादी खुद चक्कर लगाती थी, ऐसे नहीं हम लोगों को बोल दिया, गाड़ी लिया चक्कर लगाओ सब जगह। सब होटल दादी ने देखे होंगे और एक दो दो भाइयों की ड्यूटी लगा दी। सब किया हमने 10-12 दिन में, 15 दिन में तैयारी, पूरे होटल ले लिए। आबू में कोई एक भी बाहर वाला आ जाए तो कोई जगह नहीं किसी के लिए, सब ब्रह्मा कुमारियों का। अब ले तो लिया, लेकिन जिसको भी होटल में रखने के लिए बोले वो रोने लगे कि मैं होटल में नहीं जाऊंगा। अब उसके हाथ पैर जोड़ना पड़े, भाई मधुबन में जगह नहीं है, आप एक दिन के लिए यहाँ रुक जाओ, एक दिन में सेवा पूरी, फिर आ जाना। बड़ी मुश्किल से मना मुनू करके उनको होटलों में रखा। जब पूरी कॉन्फ्रेंस हुई अच्छी तरह से, उमंग उत्साह से, बहुत अच्छे विदेशी लोग आए, खूब अखबारों में निकला, टीवी में निकला, दादी इतनी खुश। और बाद में जब पूरा हो गया सब, फिर फिनिश हुआ, हिसाब किताब किया जा करके, सबको देन लेन किया, दादी कहती है ये बाबा जो है ना बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। दादी क्या हुआ? कहती है कि जितना खर्चा हुआ ना उतना ही आया, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा, जितना तुम लोगों ने खर्चा किया ना उतना ही आया है। कोई किराया नहीं दिया, कोई का मतलब कोई कर्जा नहीं लिया, कोई को कुछ कहा नहीं, जितना तुमने किया उतना ही आया। ये हमारी दादी के संकल्प थे, बहुत सिद्धि स्वरूप आत्मा, जो संकल्प रच लिया हो जाएगा। तो ये ओम शांति भवन के बाद फिर छोटा पढ़ने लगा। एक कहानी सुना देता हूँ दादी की, और बहुत सारी कहानियां मेरे पास और बड़ी रमणीक कहानियां हैं, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ तो सुनाई नहीं आपको, ये तो जनरल सुना रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी बात सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ ही मधुबन में 73 में, 2 में तो आया, 73 में दीदी और दादी दोनों बीमार हुए। और बीमारी ऐसी कोई खास नहीं थी, लेकिन दादी की ये जो खाने की नली थी ना उसमें कुछ ब्लॉकेज आई थी, तो दादी को बॉम्बे ले गए। और दादी के बाद दीदी भी बीमार हो गई, वो भी बॉम्बे चली गई। और मधुबन वालों का बड़ा प्यार बाबा के बाद, वही दीदी दादी थी संभालने वाली हमको। तो दीदी दादी ने वहां से कहा कि मधुबन में जितने भाई बहने हैं सब बॉम्बे घूमने आओ, नंबर वार आना, दो दो चार चार आओ। थे भी कितने थे, 30-40 लोग थे हम यहाँ, लेकिन जो पुराने वो हम लोगों को छुट्टी नहीं थी, हम तो नए थे, सेवाधारी जैसे थे। तो सबको छुट्टी मिली, माना एक दिन आओ, एक नाइट में आओ, दूसरे दिन पूरा घूमो, तीसरे दिन ट्रेन से चले जाओ, उसी ट्रेन से आओ, उसी ट्रेन से चले जाओ। तो सबको छुट्टी मिली, लेकिन जो टाइप करने वाला भाई था उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि अगर टाइप नहीं करेगा, मुरली नहीं टाइप होगी, प्रश्न उत्तर नहीं निकलेंगे तो लोगों को मुरली नहीं मिलेगी। इसलिए उसको कहा कि तुमको नहीं आना है, तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया। मैं नहीं टाइप सीखा था उस समय, मैं उसके बाजू में बैठा था। जब ये बाबा दादी का मैसेज आया ना वहां से कि जब तक तुमने आप समान नहीं बनाया तब तक कोई को आपको नहीं छुट्टी है, बाकी सब भले आवे, तो वो बेचारा एकदम निराश बैठा था। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता है सबको बॉम्बे घूमने की छुट्टी मिलती, मेरे को नहीं मिलती है। हमने ऐसा कहा तो मेरे को टाइप सिखा दे, मैं भी सीख जाता हूँ। कहता है सिखाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी, टाइपराइटर एक ही है, खराब हो जाती है तो कभी अहमदाबाद कभी अजमेर ले जाते हैं बनवाने के लिए, ठीक कराने, छुट्टी के बिना तो नहीं सिखा। हमने छुट्टी ले लो। तो जब छुट्टी लेने के लिए उसने मैसेज दिया तो वहां से मैसेज आता है, कौन है? हिंदी जानता है, अच्छा ठीक है, लेकिन उसको हिंदी के साथ सिंधी सीखनी पड़ेगी, अगर वो सिंधी नहीं सिखाओगे तो उसको टाइप नहीं सिखाना। मैंने कहा मैं हिंदी वाला, सिंधी कैसे सीखूंगा? लेकिन हमारे यहाँ दादा थे विश्व रतन दादा, बड़े हम्बल, सबके साथ बहुत मिलनसार, सबको आगे बढ़ाने वाले, सब कुछ सिखाया उन्होंने हम लोगों को। यज्ञ की सेवा क्या होती है, यज्ञ के अंदर कैसे सेवा की जाती है, रोटी बनाना पहले सिखाया। रोटी में तवा इतना बड़ा होता था, हम रख देते थे और 7-8 रोटी ऐसे डालते थे तवे पर, और कोयले की सिगरी होती थी तो चूल्हे पर गर्म किया एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसे फेंका, उस पर फूल गई, उठ गई, चली गई, रोटी बन गई। तो 1000-1500 रोटी अगर बनानी है तो ऐसे हम फटाफट आधा घंटे में पूरा कर लेते थे। लेकिन अगर कहीं कुछ कच्ची पक्की रह गई तो दादा क्या करता था, वहां जाता था, उठा करके वही रोटी ले आता था, कहता था इधर आओ, तुम लोगों ने यज्ञ सेवा किया, प्यार से किया, हाँ दादा बहुत प्यार से किया, इधर आओ देखो ये कच्ची है, अगर कोई खाएगा उसके पेट में दर्द पड़ेगा, फिर दवाई खाएगा, किसको नुकसान हुआ, यज्ञ का नुकसान किया। अच्छा अगर मान लो जल गई है और उसने फेंक दिया नहीं खाया तो भी यज्ञ का नुकसान किया, तो सेवा क्या किया तुमने, नुकसान ही नुकसान कर रहे हो, इसलिए इसे तो अच्छा ना करो, मैं कर लूंगा, दादा खुद लग जाता था करके। तो ऐसे सिखाता था, एक छोटी छोटी बात, मतलब यज्ञ की कोई भी चीज की कदर होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत इकोनॉमी थी, इकोनॉमी ऐसी थी जो हम लोग एक रुपया भी अपने पास नहीं रख सकते थे, एक भी पैसा नहीं किसी के हाथ में। और अगर ये बाल काटने जाना हो ना बाहर तो 12 आना होते थे, उस समय 8 आना या 12 आना। यीशु दादी कहती थी अभी थोड़ी बड़े हुए, थोड़ा और बढ़े दो, बड़े होने। माना वो भी 8 आना पैसा भी मांगना लेना बड़ा मुश्किल था, मिलते थे लेकिन पैसा यज्ञ के अंदर इतना नहीं है, इतना नहीं कुछ है, तो इकोनॉमी बहुत थी। हम लोगों को अगर घर में पत्र लिखना हो तो यीशु दादी कहती थी ऐसा करो, दीदी बताती थी कि तुम सब लिख के कागज का टुकड़ा देते, इतना बड़ा पतला सा, 8-10 को दे दिया, माना यूपी के हम 8 लोग हैं तो 8ों को कहेगी अच्छा तुम अपने बाप के लिए अपना पत्र लिख करके आ जाओ, कागज का टुकड़ा दिया लिख करके ले आओ। अब 8-10 पत्र इकट्ठे जब हो जाएंगे तो वो जो लिफाफा था ना, उस समय शायद 50 पैसे का 1 रुपये का था, उस सबके पत्र इकट्ठा करके सेंटर पर भेज दिया, पोस्ट बच गई, सेंटर वाली को लिख दिया 2 लाइन कि इनके पिताजी को पहुंचा देना। माना उसमें भी इकोनॉमी, 50 पैसे का लिफाफा नहीं मिलेगा किसी को डायरेक्ट, कोई डायरेक्ट पत्र घर में नहीं लिखेगा, जो लिखेगा वो पहले पढ़ेंगे वो लोग क्या लिखा तुमने, और फिर वहां से जो जवाब आएगा, मान लो पत्र आता है तो उनके पास पहले पोस्ट खुलेगी, डायरेक्ट कोई नहीं लेन देन कर सकता है। और पैसे की बहुत इकोनॉमी, एक एक चीज की इकोनॉमी, इतनी इकोनॉमी थी, मान लो आज हमको अगर 4 जोड़ी कपड़े मिले हैं तो अगले साल जो 4 जोड़ी मिलेंगे तो पुराने ले आओ, पहले ले आओ, कितना फटा है, कितना ठीक है, फेंकने जैसा है या चल सकता है, कितना दिन चल सकता है, चेक होगा पहले, उसके बाद 4 जोड़ी मिलेगा। लेकिन बाबा के घर में मौजे ही मौजे क्योंकि कुछ भी सेवा किया प्यार से किया तो पालना बहुत जबरदस्त थी, कभी देखो तो मक्खन मानी खिला रही है, तो कभी हलवा बनवा के खिला रही है, कभी सैर कराने लेके जा रही है, कभी चलो पिकनिक पर चलते हैं उरिया गांव था ये हमारा, जहाँ पीस पार्क बना है वहीं पर हम लोगों ने पिकनिक किया होगा, हर बार वहीं बनाते थे, वहीं खाते थे, वो करते करते उसको खरीद लिया, पीस पार्क बन गया। तो दादी के साथ मना मुरली सीख टाइप सीखी, सिंधी सीखी, और फिर दीदी के साथ प्रश्न उत्तर उनकी सिंधी की पढ़ाई करके उनके प्रश्न उत्तर टाइप करना निकालना करते करते दीदी के साथ सेवा करने का बहुत चांस मिला। लेकिन जब दीदी अव्यक्त हो गई और दादी अकेले हो गई, माना पूरी जवाबदारी उनके ऊपर आ गई, तब दादी ने कहा कि ये जो पोस्ट है वो तुम्हें संभालनी है, ये जितने पत्र है पढ़ो और पढ़ करके आओ, जो तुमको पूछना है दादी से पूछो, नहीं तो तुमको जवाब देना। तो 83 के बाद दादी के साथ विशेष रोज उठने बैठने का भाग्य, रोज 4 बजता था, दादी को दिन में रेस्ट करने का ज्यादा आदत नहीं थी, 3:30 बजे तक घूम रही है कमरे में, आधा घंटा गई लेटी और 4 बजे मोहिनी बहन को कहेगी राजू को बुलाओ, अभी तुम सो जाओ भले, उसको बुलाओ, अब उनको कमरे में बुला लेती थी, चाय आ जाती थी, हम दोनों बैठे एक सोफे पर, क्या क्या पत्र आए हैं सुनाओ, अब सब पत्र सुनेगी, फिर सुना करके आंख ऐसे बंद कर लेगी चाय पी करके, जैसे सरस्वती मैया आ गई बीच में, अब बस नाम सहित इसको पत्र इसको पत्र इसको पत्र, 10-15 पत्र तो ऐसे लिखा देती थी ऐसे बैठे बैठे, मैं नोट कर लेता था, फिर थोड़ा थोड़ा लिखाती थी नाम सहित, फिर कहती तुम अभी इसमें ज्ञान की कोई एक आधी बातें लिख करके भेज दो। तो ऐसे करके दादी जी के साथ 83 के बाद विशेष पोस्ट का, पत्र व्यवहार का, मुरली की सेवा तो 76 में ही मिल गई थी, प्रश्न उत्तर बनाने की सेवा भी उसी समय मिल गई थी, अव्यक्त बाबा के साथ बैठ करके सब कुछ नोट करने की सेवा तो 73 में ही मिल गई थी। जितनी मुरलियां अव्यक्त बाबा की आप सब सुनते हैं वो सब इन्हीं उंगलियों ने लिखी है, टेप से नहीं डायरेक्ट लिखी है। जितनी स्पीड में बाबा ने बोला मैंने टाइप करना शुरू किया, पहले टाइप पर डायरेक्ट स्टेंसिल काटता था, कंप्यूटर नहीं था हमारे पास। बाबा आते थे ओम शांति भवन में, जब आना शुरू किया, मेरा ऑफिस नीचे था, मैं हेडफोन लगा लेता था कान में, टाइप रखता था, टाइप की आवाज बहुत होती, सामने तो नहीं रख सकते थे, मैं डेली बाबा को मिस करता था, बाबा को ऐसे बोलता था बाबा आप वहां बैठे हो मैं नीचे बैठा हूं, ओम शांति भवन के नीचे के ऑफिस में मैं और ऊपर बाबा, अब बाबा बोल रहा है मैं टाइप कर रहा हूं, लेकिन एक भी मिस नहीं किया, जितना बोला डायरेक्ट टाइप किया, स्टेंसिल काटा और उसी समय छपवा करके, बाबा बैठा है मुरली छप गई और बाबा के दादी के हाथ में मुरली पहुंचा देता था, बाबा आज आपने ये बोला, बाबा बड़ा खुश होता था, बहुत वरदान मिलते थे हमको, बुद्धि का वरदान मिल गया, बहुत सारे वरदान बाबा से मिले, क्योंकि मुरली टाइप करके तुरंत छाप करके हाथ में बाबा के साथ, बाबा है और हमारी मुरली छप गई, तैयार हो गई। तो ये सेवाएं ओम शांति भवन में बैठ करके बाबा के साथ की। फिर कंप्यूटर युग आया, बाहर सीखने में तो कुछ गया नहीं, मधुबन में ही सीखा और बाबा सिखाने वाला अपने आप। दादी का इतना ब्लेसिंग रहा, इतनी दुआएं रहीं, कोई भी काम तुम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा करता है, तुमको ब्लेसिंग्स हैं, दादी की ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे कह करके उनके नाम से पत्र लिखना, उनके नाम से इतनी सारी कारोबार करना। तो दादी के सामने जब मैं 3 साल तक उनके नाम से पत्र लिखे प्रकाशमणि बन करके, तो मैं एक दिन दिल अंदर अंदर खाती थी कि दादी बॉम्बे में या मधुबन में भी है लेकिन लिखाती नहीं है, बोलती नहीं थी, चुप हो गई थी। तो एक दिन मैं बैठ गया जाकर के सामने, दादी एक बात कहूँ, बोलो बोलो। मैंने कहा दादी आपके नाम से मैं पत्र लिखता हूँ ना, थोड़ी मेरी ऐसे ऐसे होती है, पहले आप पढ़ती थी, पहले लिखाती थी, फिर लिखाती नहीं थी तो पढ़ लेती थी, हाँ बहुत अच्छा है, या करेक्शन करा देती थी, अभी ना पढ़ती हैं ना लिखाती हैं, अभी मैं आपके नाम का पत्र भेजना बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा, दादी से भी अच्छा लिखता है, ऐसे बहुत बहला रही थी मेरे को, प्यार कर रही थी। गुलजार दादी आई सामने, क्या आज दोनों बहुत प्यार से रूहरियान कर रहे हो। और दादी बॉम्बे हॉस्पिटल से आई थी उस समय, ऑक्सीजन भी लगी हुई थी। तो दादी कहती है गुलजार दादी को, गुल ये आज पता नहीं इसको क्या हो गया, इतना अच्छा पत्र मेरे नाम से लिखता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज कहता है दादी आप लिखाओगे तो लिखूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। तो दादी कहती है गुलजार दादी, दादी आपको लिखाना तो चाहिए। लेकिन बड़ी दादी कभी गुलजार दादी की बात को कट नहीं करती थी, इतना उनका रिस्पेक्ट था। और गुलजार दादी ने बोल दिया कि दादी आपको लिखाना तो चाहिए, चुप हो गए एकदम, कहती अच्छा लिख भाई। अब गुलजार दादी इधर बैठ गई, मैं इधर बैठा हूं, दादी लेटी हुई, लेट के थोड़ा ऐसे उठा देते ना बिस्तर को पीछे से, लिख। अब मेरे को पहली लाइन लिखाई कि लिखो दादी 100% ओके है। ये शब्द मैं नहीं लिखूंगा, सीधा ही बोला मैं नहीं लिखूंगा, कि क्यों नहीं लिखेगा। दादी कैसे वो लिखूं मैं, आप 100% ओके है, सब कहेंगे राजू भाई अपने मन से लिखता है, दादी हॉस्पिटल से आई है, ऑक्सीजन लगी है, उठती नहीं है, और ओके 100% कैसे है। तो दादी इतना नशे से बोली, मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर है, और ये 19-20 होता है ना। अरे इतनी बाबा की दुआएं हैं, सबका प्यार है, कहीं दादी को दर्द है क्या, कोई तकलीफ है क्या, इतना बोल करके फिर कहते लिखो दादी 100% ओके है। गुलजार दादी कहते लिख दो, लिखते लिखते लिख दिया। फिर दूसरा शब्द कहती है दादी सबको इतना ऐसे हाथ किया, ऐसे बड़ी बड़ी भाकी में पहन रही है। फिर कहती नहीं नहीं ये नहीं, रुको अभी रुको। क्यों दादी? गुलजार ये लिखाना चाहिए क्या, ये तो बाबा कर सकता है ना, मैं थोड़ी कर सकती हूँ। तो दादी कहती बाबा की जगह पर तो आप है ना, आप नहीं लिखे भाग्य नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा, आपको ही तो करना है। अच्छा भाई लिख दे। ऐसे 5-7 लाइन लिखाई और उसके बाद कहती अभी तो लिख देगा ना, हमने हाँ लिख दूंगा, जाता हूँ मैं लिख दूंगा। तो दादी ऐसे ही बड़े प्यार से मात पिता के रूप में हम सबके साथ रही, बहुत कुछ सिखाया, हर बात में एक एक बात को गाइड किया, मुरली के अंदर क्या डालना है, क्या लिखना है, वरदान स्लोगन ये वो जो कुछ था सब दादी की निगरानी में हम लोगों ने किया। बहुत सारी सेवाएं करते साथ लेते, बहुत टाइम हो गया है इसलिए पूरा करूं। कहानी रह गई ज्ञान सरोवर की, वो सुनाना था लेकिन हम अपनी तरफ मुड़ गए। क्या हुआ, एक यहाँ पर सन्यासी थे महात्मा जी, गौमुख के सन्यासी थे। गौमुख नीचे वशिष्ठ आश्रम है, 700 सीढ़ी के नीचे है, लेकिन ऊपर जो सन्यासी था वो बाबा को बहुत मानता था। और दादी जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद भी दादी से बहुत अच्छा कनेक्शन रखता था, जब भी कुछ उसको होता था दादी को फोन करता था। और दादी के अंदर ये सन्यासियों के पास बहुत प्यार था, बहुत भावना थी। यहाँ पर करीब मैं समझता हूँ 40-50 गुफाएं हैं आबू में, अलग अलग कोने कोने में बनी हैं। एक बार तो दादी ने कहा मधुबन वालों को, हम लोगों को, तुम सब सन्यासियों को निमंत्रण दे के आओ, सबको बुलाओ, दादी ब्रह्मा भोजन कराएगी। सबकी ड्यूटी लगा दी और मेरी ड्यूटी जो लगी ना, इधर 2 गुफाएं हैं, एक दिलवाड़ा के ऊपर नजदीक में आती है ज्ञान गुफा, और बहुत ऊपर चोटी पर अग्नि गुफा है, वहाँ एक सन्यासी रहता है। तो हमको 4 भाइयों को ड्यूटी दिया दादी ने कि तुम लोग इस साइड में जाओ, तुम लोग ऐसे बांट दिया अलग अलग एरिया मधुबन वालों को। तो हम लोग गए तो ये ज्ञान गुफा वाला तो बहुत भावना वाला था, गुजराती था, उसकी माता उसके साथ एक थी वो भी बहुत भावना वाली। वो कहती है तुम लोग तो सवेरे सवेरे आए थे ना, निमंत्रण दे के गए थे। ना माता जी मैं पहली बार आया हूँ। कहती नहीं, 4 लोग सवेरे सवेरे आए थे सफेद ड्रेस में, वो निमंत्रण दे के गए थे। तुमने कहा माता जी भूल गए होगे, कोई दूसरा होगा। कहती नहीं आप लोग ही आए थे। तो वो बाबा ने मनसा सेवा कराई थी। दादी ने कहा था अमृत वेले जिसके पास जाना उसके पास पहले सूक्ष्म में पहुंचना, माना सूक्ष्म सेवा करना फिर जाना, नहीं तो ये लोग जवाब ठीक नहीं देते हैं। तो उसको अनुभव हुआ होगा, तो हमको भी लगा कि भाई ऐसी सेवा हम लोगों ने की, सुबह सुबह योग करके उनके पास गए थे। फिर जब अग्नि गुफा में गए ऊपर, बहुत ऊंचे पर थे और बिल्कुल अंदर जंगल में, कब कितने सालों से वो नीचे नहीं उतरा है। तो कहता है मैंने सुना है ना ब्रह्मा कुमारियां ना सन्यासियों को उल्टा लटका देती हैं। और दादी आपकी क्यों मुझे बुला रही है, क्या हमको कुछ सजा मिलनी है क्या। नहीं महात्मा जी आपने गलत सुना है। कहते हमारे भगत लोग आते हैं ना तो पता नहीं आपके आश्रम के लिए बहुत कुछ बोल के जाते हैं। कोई बात नहीं, सुनी सुनाई है ना, आप एक बार आके देखो, दादी बहुत प्यार से आपको ब्रह्मा भोजन यज्ञ का ब्रह्मा भोजन कराएगी, सौगात देगी, और बहुत प्यार से याद किया। कहता सच्ची बोल रहे हो आप लोग, अच्छा मैं आता हूं। तो कई सालों के बाद नीचे उतरा, आया यहाँ करीब 50-60 सन्यासियों को इकट्ठा किया था, ब्रह्मा भोजन हुआ, फिर दादी ने सबको कंबल दिए, बड़े बड़े फ्रूट के टोकरे दिए सबको, बहुत प्यार से पालना दिया, इतने खुश होके गए जो बात मत पूछो। अब वो जो सन्यासी था ना उसको एक बार कुछ हर्निया का या कोई बहुत पेन पड़ा, दर्द हुआ, और उसने दादी को फोन कर दिया, दादी मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे कुछ डॉक्टर भेजो, मुझे कुछ करा दो इलाज। तो दादी ने यहाँ पर डॉक्टर को भेजा, कहा जाओ उसको देखो क्या है। तो उसको वो डॉक्टर ने, बनारसी भाई थे, वो ले गए अहमदाबाद सन्यासी को। अहमदाबाद ले गए तो उसको डर लगता था क्योंकि उम्र बड़ी थी, 108-109 साल के बाद शरीर छोड़ा उसने, तो उस समय भी मैं समझता हूँ 100 के लगभग उम्र होगी। तो बनारसी भाई जब ले गए तो डरता था कि ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में गया तो उसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, और ब्रह्मा बाबा ने उसके सिर पर ऐसे हाथ रख करके कहा बच्चे तुम डरना नहीं, ऑपरेशन मैं करूंगा, डॉक्टर तो निमित्त मात्र है, तुम ठीक हो जाओगे। उद्धव आ गया, निर्भय होकर के चला गया, बाबा को उसको अनुभव हो गया साकार में ब्रह्मा बाबा का, और गया और ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गया। ठीक होकर के जब आया उसकी भावना बहुत बैठ गई और उसने संकल्प किया कि मुझे ये जो हमारी 30-35 एकड़ जमीन है गौमुख के ऊपर, ये देनी है मुझे, बाबा को देनी है, मैं मर जाऊं कभी भी मुझे ये देनी है। अब वो सारे कागज आगज जो उसके पास थे, भाइयों को बुलाया, ये ले लो, रजिस्ट्री करा लो और मुझे तो देनी है बाबा को। वो लाए, कागज लाए, बड़े खुश, क्योंकि दादी को संकल्प चल रहा था, ओम शांति भवन के बाद छोटा पड़ रहा है, कुछ बड़ा बनना चाहिए। तो दादी के पास आए तो दादी को सुनाया कि दादी ऐसे ऐसे सन्यासी की जमीन है, ये इतना 40-30-35 एकड़ है और बहुत प्यार से दे रहा है, फ्री दे रहा है, कुछ पैसा नहीं लेगा। दादी ने कहा कोई भी चीज लेने के पहले बाबा से तो पूछना पड़ेगा, बिना बाबा के पूछे मैं नहीं लूंगी। तो गुलजार दादी को हिस्ट्री हाल में बिठाया और हम लोग 10-12 भाई बहने बैठे थे, सामने बैठे थे। बाबा आए, बाबा ने थोड़ी देर दृष्टि दी और फिर बोलते, बच्चे ये जो कागज है ना, ये कल सवेरे वापस कर देना, बाबा को सन्यासी की जमीन नहीं चाहिए। तो सबने अपना अपना तर्क देना शुरू किया, भाई लोग ने, बाबा आपने तो अनुभव कराया, उसको साक्षात्कार कराया है, आपके कारण तो दे रहा है, भावना से दे रहा है। बच्ची, बाप कहता है मुझे सन्यासी की जमीन नहीं चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार। दादी चुप, कुछ नहीं बोले दादी। बाबा ने एकदम कहा अभी कल ही वापस करके आना, परसों भी नहीं, कल ही वापस करके आना। अब भाई लोग चुप हो गए, चले गए लेकर के कागज। उसको जब दिया तो कहे, ऐसे आप लोग डर गए क्या, डरते क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि ये सारे जितने गुफाएं हैं ना, ये रघुनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बिना कोई जमीन इधर उधर नहीं दे सकता है, और ट्रस्ट के अंदर ही वो सब आती हैं गुफाएं जितनी हैं। तो जब उसको वापस किया तो वो बड़ा लगे उसको, बड़ा कि ऐसा नहीं डरो, मेरे पास बंदूक है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। बोला नहीं बाबा, दादी का विचार नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे। उसके बाद उन लोगों को थोड़ी भुनक पड़ गई होगी, दे रहा है सबको, तो वो सब इकट्ठे हो गए सन्यासी मारपीट करने के लिए, लेकिन वो तो जमीन तो लिया नहीं था, कागज सारे वापस कर दिया, तो क्या करेंगे, चुप हो गए। जब वो सब चुप हो गए, बाबा की नजर में तो जमीन थी। तो एक दिन ओम शांति भवन में बाबा आए थे, सुबह 6 बजा था, और 6 बजे एक बार तो बाबा ने ऐसे दृष्टि देते देते आंख बंद कर ली, वापस जाने लगे, फिर आ गए और आके दादी की तरफ देखा और दादी का इधर आओ ऐसे बुला लिया अपने बाजू में। फिर बोलते, ये जो दूध वाले आते हैं ना, इनसे बात करना, जमीन ये देंगे आपको, ऐसे बोला और आंख बंद कर चला गया। 6 बजे बोला है, और 9 बजे वो दूध वाला जो दूध देता था, सालगांव वाला भाई, वो आया दूध डिपार्टमेंट में, दूध दिया, और दूध देने के बाद बोलता है, भाई जी हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी जमीन पड़ी है, 30-35 एकड़ है, लेकिन चरागाह की जमीन है, आप लोग लेना चाहो तो देख लो, वो बहुत सस्ती है, कोई ज्यादा नहीं है, हम लोगों की है, सब बाबा की यज्ञ में सेवा में सफल होगी। तो भाई दादी के पास उसको लेके आया दूध वाले को। तो दादी कहती, सवेरे तो बाबा ने आज बोला था 6 बजे कि दूध वालों की जमीन पड़ी है, देख के आओ तुम लोग कहाँ है। तो देखने जब आए तो वहां पगडंडी थी, रोड तो थी ही नहीं, और एकदम जंगल था, चरागाह की जमीन, पहाड़ियां, झाड़, जंगल। तो देखा तो भाइयों को तो लगा कि यहां कैसे कुछ बनेगा, लेकिन एक तरफ बाबा की नजर, दादी की भावना, ठीक है जमीन वो लिखा पड़ी हो गई, लेकिन उसको ट्रांसफर कैसे करें, चरागाह की जमीन है, ट्रांसफर नहीं होगी, ये नहीं होगी, उसकी लंबी कहानी है, उसकी बाद में सुनो। लेकिन फिर हमारे चन्ना रेड्डी जी वकील यहाँ गवर्नर थे, उनका शासन आया, वो बाबा के बहुत अनन्य बच्चे थे, उन्होंने गवर्नर हाउस में बाबा कमरा भी बनाया था, और जब भी राजस्थान के गवर्नर होते, जब भी आबू आए, डेली यहाँ आते थे, उन्होंने उस जमीन को क्लियर किया, वहाँ की रोड फाइनल किया, अपने बजट से, पैसे से, अपने पास जो था उसका सब फाउंडेशन पड़ा, ज्ञान सरोवर निर्माण हुआ, बन गया, उसके बाद वो ट्रांसफर होके चले गए उद्घाटन करके। तो ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन दादी जी ने जो संकल्प रचा, चाहे वो ज्ञान सरोवर बना, चाहे शांति वन बना, चाहे मनमोहिनी वन बना। एक दिन की बात सुनाता हूँ, बहुत रमणीक है इसलिए सुनाता हूँ। एक दिन मैं गया दादी के पास, बाजू में बैठा था, कोई न कोई सुना होगा, सुनाया एक दो बार, तो मैं बैठ गया बाजू में, तो दादी कहती राजू आज मेरे यहाँ खुजली बहुत हो रही है। तो मैंने हाथ लिया दादी का, मैंने दादी कहाँ खुजली होती, बोला यहाँ होती। मैंने यहाँ होते तो क्या होता है, बोली पैसा आता है। बड़े प्यार से ऐसे, तो मैंने कहा दादी लाओ और खुजला दे, तो इसमें भी होती है क्या, कहती नहीं इसमें नहीं होती। तो मैं बहुत प्यार से सहलाता रहा उंगली हाथ, कहती है पैसा आता है। हमने ठीक है, मैं तो समझाया कि ये तो रमणीकता से ऐसे बोल रही होंगी। और थोड़ी देर के बाद जो हमारी कारोबार थी, थोड़ी बात पत्र उतरा की बात किया, 15-20 मिनट में बैठा, वो बात मैंने भुलवा दिया, फिर उठ करके चला गया। और जा रहा था केवल मैं वहां से क्वार्टर से, दादी क्वार्टर से निर्भय भाई के कमरे तक, इधर आया था महादानी क्वार्टर तक, पीछे से पहरे वाला भाई आता दौड़ करके, दादी बुला रही, दादी बोले क्या हुआ दादी बुला रही, अभी तो आया, बोली पता नहीं अभी, कहती बुला लाओ उसको। मैं गया वापस, और वापस गया तो इतना बड़ा बंडल पैसे का टेबल पर रखा था। कहती है देख राजू तेरे को बोला था ना खुजली होती है पैसा आता, ये आ गया। तो मैं ऐसे देखा, हमने बाबा कहता छप्पर फाड़ के देता हूँ कहीं पिटा हुआ होगा। कहाँ से आ गया दादी पैसा, कहती बताऊं क्या, नहीं दादी बताना तो पड़ेगा कहाँ से आएगा इतना, और जितना जरूरत थे उनको जो संकल्प किया था उतना ही था। तो कहती है जिसने दिया ना उसको मैंने कहा तुम बाबा कमरे में बैठ जाओ, तुम इधर से गया वो इधर से आया, और वो दे के गया है यहाँ रख के गया, फिर मैं उसको बाबा कमरे में बिठाया है, तुम चुपचाप झांक के आओ पहचानो कौन है, मैंने देख लिया जा करके। कहती बोलना कुछ नहीं देख करके आ जाओ, मैंने देख लिया वो भाई बैठा था, मैं पहचानता था उसको, फिर देख करके फिर कहती अच्छा ये इतना आ गया है तुम जाओ जमा करा देना, ले जाओ अकाउंट में। मैं ले आया सारा पैसा उठा करके जमा कराया, फिर मैंने दादी बोला दादी ये कैसे आ गया सही बताओ कैसे आया। कहती आज सवेरे सवेरे मैंने बाबा को बोला, मनमोहिनी वन बन रहा है बाबा, 5 लाख की जरूरत है, मैंने और किसी को कुछ नहीं बोला, और बाबा ने मेरी खुजली तो दी लेकिन मैं सचमुच 5 लाख किया। मना इतना शुभ संकल्प था, मैंने बाबा को बोला और किसी को नहीं बोला। फिर कहती तुम उस भाई से पूछना तुमने क्यों दिया। फिर मैं उस भाई को मिला के अलग से, हमने कहा भाई तुमने आज दादी को 15 मिनट के अंतर में, मैं निकला हूँ दादी ने मेरे से बात किया है और 15-20 मिनट तुम आए, और इतना सा पैसा कैसे दिया कहाँ से दिया। तो बताने लगा कि सुबह सुबह मेरी जमीन यहाँ पड़ी थी आबू में, सुबह मेरे संकल्प आया क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इसको बेच दूं। तो बेचा तो मैंने बहुत दिन से सौदा किया था, लेकिन आज ही कोई ने पैसा मुझे दिया, और मैंने कहा मैं पैसा लेके क्या करूंगा, मैंने दादी के हाथ में दे दिया। उधर बेच करके दादी के हाथ में पैसा दिया, और दादी का काम अपना जो था पूरा करा दिया। ये बाबा कैसे कराता है, कैसे यज्ञ चलाता है, करण करावनहार, उसकी छत्र छाया के नीचे हम सब पढ़ रहे हैं। अभी लोग कहते हैं दादियां चली गई, गुलजार दादी चली गई, जानकी दादी, अभी कैसे चलेगा। अरे जिसका यज्ञ है वो तो कहीं नहीं जाएगा, जब तक स्थापना संपन्न नहीं हुई है, जब तक गेट नहीं खोला है परमधाम का, तब तक ब्रह्मा की आत्मा तो जा नहीं सकती। गेट खुलेगा जाएंगे सभी, लेकिन उसके पहले कैसे भी किसी भी विधि से स्थापना का संपन्न कार्य होना है, बाबा को प्रत्यक्ष होना है, जय जयकार होनी है। 3 दृश्य होंगे, एक जय जयकार होगी, दूसरी हाहाकार होगी। जो आत्माएं ज्ञान लेने के बाद भी अलबेली रही हैं, अपना समय अपनी शक्तियां नष्ट की हैं, व्यर्थ गंवाई हैं, उनको जरूर दुख के आंसू आएंगे। बाबा ने एक बार कहा था खून के आंसू आएंगे, कि मैंने अलबेलीपन में अपना समय गंवा दिया, अपनी शक्ति गंवा दी, तो वो ही हाहाकार करेंगे। दुनिया में हाहाकार अलग होगी, लेकिन ब्राह्मणों का पश्चाताप जो होगा वो बाबा देख नहीं सकेगा, रहम दिल है, इसलिए विनाश हो जाएगा। प्रत्यक्षता, पश्चाताप और परिवर्तन, ये 3 दृश्य अंतिम होने वाले हैं, और वो बहुत समीप दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रत्यक्षता के लिए बहुत कुछ सेवाएं, अब लॉकडाउन में लोग कहते क्या सेवाएं होंगी, आपको बताऊं हजारों स्टूडेंट बन गए लॉकडाउन में, हजारों स्टूडेंट बने हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे निकले हैं जिनके लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, उन तक पहुंचना मुश्किल था, वो बाबा के बच्चे बन गए। तो ये बाबा करण करावन हार है, उसकी सेवाएं रुकने वाली नहीं है। दुनिया उलट पुलट जाएगी लेकिन बाबा का कार्य रुकने वाला नहीं, वो करण करावन हार है। ब्रह्मा बाबा गए, नई सेवाएं शुरू हुई, दीदी अव्यक्त हुई, पांडव भवन भरपूर हुआ, भरपूर हो गया यज्ञ। दादी गई, उसके बाद और सेवाओं का नया विस्तार हुआ। अब गुलजार दादी गई हैं, परिवर्तन देख रहे हो कितना फास्ट, जानकी दादी और गुलजार दादी। ये सब आत्माएं जिनके रग रग में बाबा है, यज्ञ है, बच्चे हैं, वो कहीं यज्ञ को ऐसे बीच में छोड़ेंगी नहीं, वो संपन्न करके ही जाएंगी वापस। इसलिए शरीर भले गए हैं लेकिन आत्माएं सब अपनी सेवा पर उपस्थित हैं, भिन्न रूप से हैं, और अपना साक्षात्कार कराएंगी, प्रत्यक्षता होगी, परिवर्तन होगा। ठीक है, चलो अभी 10 मिनट योग कर लो। ओम शांति।
और संकल्प से भी जो दिया संसार को जग भूल पाएगा नहीं दादी मां तुम्हारे प्यार।